ई राघवेंद्र राव, जिन्होंने बिलासपुर को पहचान व नाम दिया।
ई राघवेंद्र राव, क्या आपने कभी ये नाम सुना है? बिलासपुर में राघवेंद्र राव सभा भवन, शासकीय ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज, बस इतना ही जानते हैं ना हम इस नाम को। लेकिन ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये वो नाम है जिसने राजनीतिक नक्शे में बिलासपुर को पहचान व नाम दिया। आज हम ई राघवेंद्र राव जी को याद करेंगे उनके पोते बाबा राव जी के साथ। प्रस्तुति है संज्ञा टंडन की।
अरपा के तट पर बिलासा ने तो इस शहर को बसाया, मगर राजनीतिक नक्शे में उसे नाम और पहचान देने वालों में ई राघवेंद्र राव एक ऐसी हस्ती हुए जिन्हें भुलाना मुश्किल है। ई राघवेंद्र राव बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख प्रेरणा स्तंभ थे। उन्होंने 1970 के अखिल भारतीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में बिलासपुर का प्रतिनिधित्व किया था। उस वक्त उनकी उम्र 18 वर्ष थी। राव साहब ही ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने नगरपालिका परिषद के प्रथम गैर अंग्रेज अध्यक्ष बनने का गौरव पाया। 1915 के पूर्व तक बिलासपुर नगरपालिका में अंग्रेज ही अध्यक्ष होता था। स्वर्गीय राव ने अंग्रेज उम्मीदवार गाडगिल को हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। तब से लगभग स्थानीय व्यक्ति ही नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर काबिज होते रहे। स्वर्गीय ई राघवेंद्र राव का जन्म 4 अगस्त 1889 को
मैं कामठी में जन्म स्थान है। बाल्यकाल में भी करीब यदि 4-1 साल के रहे होंगे तो वो बिलासपुर आ गए। उनके फादर जो थे नागन्ना बाबू, वो बिलासपुर में ठेकेदारी करते थे, तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी गोड़पारा स्कूल और म्युनिसिपल स्कूल में हुई। उसके बाद नागपुर से हिस्लॉप कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और नागपुर के बाद फिर बारेटला करने ब्रिटेन लंदन चले।
उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से व्यापार और व्यवसाय करते करते बिलासपुर आ गए थे। उनके पिता का नाम नागंता बाबू था। लंदन से उन्होंने बैरिस्टरी पास की और वे 1914 में बिलासपुर आ गए।
वो सीधा जैसे लंदन से वापिस आ गए, फिर यहाँ पे थोड़े दिनों उन्होंने किया, तो जो उस टाइम आह्वान हुआ गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि स्वतंत्रता का आंदोलन का सूत्रपात हुआ, तब उन्होंने अदालतों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वो प्रथम पंक्ति में जो शुरुआती लोग थे, ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ला और बैरिस्टर ठक्कर रायपुर में, ये 10-11 लोगों ने पूरा किया, और बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सिंह, ये इनके क्लासमेट भी थे वहाँ लंदन में जब बारेटला करने गए। जो बिलासपुर इस एरिया से 2 ही लोग गए थे। जैसे उन्होंने क्या सबसे पहले अदालतों का बहिष्कार किया, और ये था कि उस जमाने में ब्याज बट्टे का काम होता था, तो उन्होंने सबसे पहले उस जमाने में पूरे जो प्रॉमिसरी नोट थे सब डिस्ट्रॉय करा दिए, किसी से पैसे नहीं वापस लिए। उनके जो फादर का बहुत बड़ा बिजनेस था, और फिर उनके फादर की डेथ मैंने जैसे वो लंदन से आए तो हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा समय ये राजनीति में ही दिया।
देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत स्वर्गीय गांधी जी के आह्वान पर वकालत न कर आंदोलन में एकदम सक्रिय हो गए। उन्होंने नवंबर 1915 में नागपुर में नरम एवं गरम दल के संयुक्त अधिवेशन में मध्यस्थता निभाई। राव साहब तिलक जी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने ही तिलक की पुण्यतिथि एवं गांधी जी की जयंती पर छुट्टियां प्रारंभ करवाई थी। राव साहब ने 1915 में परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद एक महत्वपूर्ण योजना बनाई थी कि प्रांत की सभी जिला कांग्रेस कमेटियों का स्थानीय निकायों पर अधिकार हो। इस प्रस्ताव को उन्होंने बैतूल की प्रांतीय सभा में पास कराया, किंतु योजना कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाई। फिर भी बिलासपुर जिले में योजना को अमल करवाया गया। तिलक पुण्यतिथि, गांधी जी की जयंती पर छुट्टी घोषित करने की प्रथा भी इसी योजना का अंग थी।
मेन चालू होता है 1916। उनके सारे जो ग्रुप के लोग थे उन लोग सब मिल के निर्णय लिए होंगे कि हम लोगों को वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ऐसी शुरुआत। रविशंकर शुक्ला और बैरिस्टर ठक्कर, वामन राव लाखे, ये सब उनके साथ थे। इनका क्या हुआ है कि कांग्रेस में थे, फिर इन्होंने स्वराज पार्टी ज्वाइन कर ली। तो स्वराज पार्टी में क्या हुआ, 1938 में जब पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हुआ, तो इनकी थोड़ा मोतीलाल नेहरू जी से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके विवाद हो गया। तो उन्होंने क्या किया, 1938 में एक रॉ कांग्रेस करके एक पार्टी बनाई और पूरा चुनाव लड़ा, तो इनके 12 आदमी जीत गया। तो यहाँ पे सीपी सेंट्रल प्रोविंस में क्या था कि कांग्रेस गवर्नमेंट न बना पाई, यहाँ पे स्वराज पार्टी की गवर्नमेंट बनी। नहीं, सेंट्रल प्रोविंस, हाँ, वो नागपुर राजधानी थी, तो उसमें नागपुर से समझ लीजिए उधर अकोला तक और इधर रायगढ़ तक, ये सब सेंट्रल प्रोविंस में था। और जो महाकौशल का एरिया, जो जबलपुर अगर विंध्य प्रदेश को छोड़ के, ये सब सीपी में था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मुख्यमंत्री रहे, फिर इसके पहले शिक्षा मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, और जब मॉन्टेगु ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म आया, ये उसी वक्त ये चुनाव हुआ था, तो फिर यहाँ मॉन्टेगु बटलर करके गवर्नर थे, उनसे उनकी बहुत जमती थी प्रशासकीय मामलों को लेकर। तो फिर जब उनके कांग्रेस से थोड़ा सा मोतीलाल नेहरू जी से डिफरेंस होने लगा, तो उन्होंने दूसरा चैनल पकड़ लिया, जो माने वो गवर्नर बन गए, तो गवर्नर बन गए तो थोड़ा सा प्रो ब्रिटिश टाइप का रहता था। फिर गवर्नर बनने के बाद वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो मेंबर थे, तो जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था उसमें एक केंद्रीय मंत्रिमंडल था, तो उसमें वो आंतरिक सुरक्षा मंत्री थे। और फिर कुछ दिनों के लिए वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले वो लंदन में थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, इंडिया का में जो भी राज्यों की गतिविधियों को देखने के लिए एक पद होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, वो भी उसमें भी काम कर चुके हैं। 1939 की बात है, जब नागपुर में कुछ वहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई, तो उनको मॉन्टेगु बटलर ने गवर्नर का चार्ज, माने अंतरिम गवर्नर बनाए गए थे, पहले वो इस एरिया के नॉन ब्रिटिशर्स थे जो गवर्नर पद थे।
नगर पालिका परिषद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोनों संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया। स्थानीय संस्थाओं के भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना जरूरी हुआ। शालाओं की नियमित प्रार्थना में वंदे मातरम राष्ट्रीय गान राव साहब ने ही शुरू करवाया था। ई राघवेंद्र राव की विद्वत्ता पूरे भारत में मशहूर थी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष की हैसियत से अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी को फरमान जारी किया था कि वो अपने अधीनस्थ शालाओं में ठहरने से मना करें, क्योंकि शालाएं धर्मशाला या सराय नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी को राव साहब जैसा व्यक्ति ही ऐसा आदेश कहकर जारी करवा सकता था। ये उदाहरण भारत में अपने ढंग का पहला था। बिलासपुर में अगर हम उनके योगदान की बात करें तो
अब जैसे जिला सहकारी बैंक को बनाने में ये सबसे बड़ा, ये भी 1916 में करीब बना है, 1918-19 में बना है, मानी इसको भी 120 साल हो गए। जैसे नगर पालिका रहती थी ना, तो अभी जैसे जिला पंचायत है, पहले भी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुआ करता था, तो जो गांव के जो स्कूल वगैरह रहते थे सब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नीचे रहते थे। मैंने बहुत से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद काफी स्कूल खुलवाए हर गांव में।
ई राघवेंद्र राव जी के पोते श्री बाबा राव जी से जब हमने राघवेंद्र राव सभा भवन के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया,
हाँ नहीं, ये तो नगर पालिका ने उसके जो देवी प्रसाद वर्मा उस जमाने के तत्कालीन अध्यक्ष, तो उन्होंने उनके प्रयासों से उनके यादगार को बनाए रखने के लिए वो हॉल बनाया।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हॉल आदि उनके नाम पर हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए उन्होंने देश भर में काफ़ी काम किया है।
अभी मैं एक आंध्र प्रदेश में एक गुडला वल्लेरू करके जगह है, वहाँ पे भी एक ई राघवेंद्र राव कॉलेज है। आंध्रा में इसलिए माना कि आंध्र प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में जाके इतना अच्छा काम कि इस मेमोरी में वहाँ के लोगों ओके। विजयवाड़ा जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे भी एक सिद्धार्था कॉलेज है, उसमें कॉलेज के कैंपस के अंदर एक राघवेंद्र राव हॉस्टल है।
हमने सुना है कि किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए डेब्ट रिलीफ एक्ट भी देश में उन्होंने ही लागू करवाया था।
वो जब वो सीपी में मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहले किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए ऋण मुक्ति का एक विधेयक लेके आए थे, जो किसानों का कर्जा माफ करना और उसमें ब्याज बहुत ज्यादा लगता था उसको सब्सिडाइज करना, डेब्ट रिलीफ एक्ट लेके आए थे। हाँ, सबसे पहली बार इंडिया में यूनाइटेड माने ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले ये बिल सीपीएन बरार में हुई।
क्रिप्स योजना लेकर आने वाले सर स्टीफर्ट क्रिप्स को वापस भेजने में वैसे तो पूरे देश में भारी आंदोलन हुए, लेकिन सर्वाधिक योगदान ई राघवेंद्र राव का माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के सफलतम कूटनीतिज्ञ सर स्टीफर्ट क्रिप्स ने मित्र राष्ट्रों के साथ रूस का समझौता कराने में सफलता प्राप्त की थी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने क्रिप्स को भारत में युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वतंत्रता देने के लिए समझौता कराने भेजा था। इस समझौते में अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल थी।
वो गांधी जी ने जब वो कांग्रेस छोड़ दिए थे 1940 में, तो गांधी जी ने उनको एक पत्र लिखा कि आपको फिर से कांग्रेस में आ जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद जब मैंने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, ये तेज बहादुर सप्रू ये सब उनके बैचमेट हैं, जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई उस जगह को बाबा साहब अम्बेडकर लिए गए उस जगह।
स्वर्गीय ई राघवेंद्र राव ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में अंधुलाल पेट्रोल पंप के सामने की भूमि पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक प्रेस प्रारंभ करवाया था। इस प्रेस से जिले भर की शालाओं अन्य संस्थाओं के लिए एक साप्ताहिक प्रारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से न केवल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के निर्णय बल्कि जन जागरण की अन्य सूचनाएं भी पहुंचाई जाती थी। सीपी बरार प्रोविंस के वक्त हिंदी भाषी लोगों को महत्व और स्थान दिलाने में भी ई राघवेंद्र राव का बड़ा योगदान था।
क्या हुआ था, जब नागपुर में था ना, तो मराठी लोग बहुत ही हावी थे, तो ही वाज द पर्सन जो हिंदी भाषी लोगों को का नेतृत्व वहाँ करवाया। हाँ, हिंदी माने या तो हिंदी भाषी यहाँ के लोगों को मौका ही नहीं मिलता था ना, तो माने ई राघवेंद्र जी पहले व्यक्ति थे जो हिंदी भाषी क्षेत्र से वहाँ पे काउंसिल में मंत्री बने। और
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी सलाह दी थी ई राघवेंद्र राव ने, के संदर्भ में सुनिए।
जैसे लोग बताते हैं जब क्रिप्स मिशन जो आया था आजादी को, माने एक्चुअली में पावर ट्रांसफर का प्रोसेस चालू हो चुका था, उस एग्रीमेंट में ऐसे कुछ शब्द डलवाना चाहते हैं जिससे कभी आज़ादी में दखल हो सकता था, तब इन्होंने गांधी जी को बोला कि ये क्लॉज उसमें डलवा रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल मत साइन, माने इस मुद्दे पे आप एग्री मत करें, तो क्रिप्स जी को वापस जाना था। मैंने चर्चिल जी ने भेजा था कि आप इंडिया में जाके निगोशिएट करिए, तो कुछ ऐसे मैंने शर्तें रखना चाहते थे जो इंडिया के हितों के खिलाफ।
तिलक जी उनके राजनीतिक गुरु थे और राघवेंद्र जी की उनके साथ नजदीकियां भी थी। बिलासपुर जब वे आए थे तो इन्हीं के घर रुके थे।
नहीं, नेहरू ने तिलक जी से क्या था, ये अक्कलकोट एक जगह है पुणे के पास, वहाँ के महाराज, तो जो मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे, माने उन्हें दीक्षित थे, तो जब लोकमान बाल गंगाधर तिलक जब स्वतंत्रता का अलग जगह में, मैंने मेरे ग्रैंडफादर के फादर अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे, तो जब तिलक जी आए लोकमान तिलक जी वो हमारे घर में रुके भोपाल में, तो उनसे वो मैंने उस वक्त राघवेंद्र राव जी एकदम यंग थे, तो उनसे फिर प्रभावित होकर फिर आगे उन्होंने काम करा, और मेरे ग्रैंडफादर ई राघवेंद्र राव जी को ब्रिटेन भेजने की सलाह अक्कलकोट महाराज ने ही दी थी।
हिंदुस्तान में एयरनॉटिकल इंजीनियरिंग और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भी इन्होंने करवाई थी।
इरमल की एक किताब है बिजनेस डिजन, तो उसमें वॉलचंद हिरचंद ग्रुप जो वर्तमान में प्रीमियर ऑटोमोबाइल ये फिएट वगैरह हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन लोगों ने सबसे पहले हिंदुस्तान में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को चालू किया। उस टाइम में वो ई राघवेंद्र राव जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि वालचंद हीरचंद ग्रुप को हिंदुस्तान में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का काम शुरू करने के लिए, यानी नहीं डायरेक्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी चालू करने के लिए उन्होंने उस ग्रुप को बहुत ज्यादा मदद। ये हीरामल की किताब है बिजनेस लीजेंड।
स्वर्गीय ई राघवेंद्र राव 1936-37 में प्रांत के गवर्नर रहे। उन्हें देश के वायसराय काउंसिल सुरक्षा विभाग का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। ऐसे प्रतिभाशाली व सदैव खादी धारण करने वाले ई राघवेंद्र राव का स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही 15 जून 1942 को निधन हो गया। उनके निधन पर शहर क्या पूरे सीपी बरार प्रांत में शोक की लहर फैल गई थी। बिलासपुर शहर से अपना प्रारंभिक जीवन और राजनैतिक जीवन आरंभ करने वाले ई राघवेंद्र राव ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बड़े बड़े कीर्तिमान रचे, बड़े बड़े कार्य किए। यह हम बिलासपुर वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि हमसे 3-4 पीढ़ी पूर्व श्री ई राघवेंद्र राव जी ने पूरे देश में बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के नाम पर इतिहास रचा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने वाले राज पुरुषों में बिलासपुर के ई राघवेंद्र राव के बारे में अभी आपने ये रूपकात्मक कार्यक्रम सुना, जिसमें जानकारी दे रहे थे उनके पोते श्री बाबा राव। अर्पा रेडियो से प्रसारित इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी संज्ञा टंडन की।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।